ओम शांति। एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था जापान में, जिन्हें समुराय कहते हैं। एक दिन यह योद्धा अपने घर आता है और जैसे ही सोने जाता है, और जैसे ही सोने जाता है देखता है कि उसकी खटिया पर एक अत्यंत शक्तिशाली चूहा है। तो योद्धा उसको इशारे से कहता है कि हटो, तो वो चूहा और जोर से उसे घूरता है। योद्धा को गुस्सा आता है, मेरी खटिया पर और चूहा। तलवार निकलता है अपनी और सीधा तलवार चलाता है, तो वो चूहा दूसरी जगह पर। फिर उस योद्धे को और ज्यादा क्रोध आता है, बहुत सारी लड़ाइयां उसने जीती होती थी, और जहां वो चूहा जाता है वहां पर वार करता है। परंतु चूहा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसकी तलवार कट जाती है। रात भर युद्ध चलता है, आखिर विजय चूहे की ही होती है। वो योद्धा सोचता है कि यह बात किसी को पता ना चले, लोग क्या कहेंगे, इतने युद्ध जीते और चूहे से हार गया। परंतु जो होना नहीं था वो हो गया। उसके कुछ मित्रों को पता चल गया कि रात में एक चूहे ने इसे हरा दिया है, तो मित्र उसे सुझाव देते हैं, कुछ हितैषी मित्र होते हैं, कि ऐसा होता है कभी कभी, तुम एक काम करो, तुमसे तो नहीं हुआ, यहां पर कुछ अत्यंत शक्तिशाली बिल्लियां हैं, उनसे थोड़ा जाके कहो, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी कुछ मदद करे। तो बिल्लियों की जो हेड होती है उनके पास हो जाता है और उनको अपनी समस्या बताता है। तो बिल्लियों की अपनी एक मीटिंग होती है जिसमें मुख्य बिल्ली जो है, उनमें से जो सबसे लड़ाकू बिल्ली है, उसको यह काम सौंपती है। और वो लड़ाकू बिल्ली दूसरे दिन पहुंच जाती है उस घर में, दरवाजे से देखती है उस चूहे को, तो चूहा भी उस बिल्ली को घूर रहा है। उस पर आक्रमण करने की कोशिश करती है परंतु डर जाती है, क्योंकि पहले ही सुना हुआ है कि वो जो लड़ाकू योद्धा था उसको भी इस चूहे ने हराया था, ये कोई साधारण चूहा नहीं है, जरूर कुछ अलौकिक शक्तियां इस चूहे में है, नहीं तो क्यों वो योद्धा हार गया होता। तो वो आक्रमण करने से पहले ही थर थर कांपने लगती है डर के मारे, कहीं मेरा भी ये हाल हो गया तो। और इससे पहले कि वो आक्रमण करे, वो चूहा ही उस पर आक्रमण कर देता है। बिल्ली घायल होकर गिर पड़ती है और निकल जाती है बेचारी। बिल्लियों के समाज में उसकी बहुत बदनामी भी हो जाती है। योद्धा बहुत परेशान होता है, अब क्या किया जाए। फिर कोई कहता है कि राजमहल की जो बिल्ली है, राजसी बिल्ली, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका आधार ले लो, राजा से जाकर विनती करो, तो शायद राजा मान जाए तुम्हारी यह बात। तो वो राजा के पास जाता है और अपनी व्यथा कहता है। तो राजा कहते हैं ठीक है, और फिर वो राजसी बिल्ली को लेकर जाता है। परंतु देखता है ये राजसी बिल्ली तो इतनी शक्तिशाली नहीं नजर आ रही है, इससे तो वो लड़ाकू बिल्ली जो थी लड़ाकू वो ज्यादा पावरफुल थी। परंतु अब क्या करे, खुद ही तो गया था राजा के पास। तो वो बिल्ली के को लेकर जाता है अपने घर में। सारा गांव इस युद्ध को देखने के लिए उपस्थित होता है, क्योंकि वो चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था। दिव्य शक्तियां जरूर उसमें होगी, ऐसा सबने सोचा था। तो राजा की बिल्ली आती है, दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है और चूहे से एकदम से मार देती है, और मरा हुआ चूहा मुंह में लेके बाहर आकर फेंक देती है। तो सब उसको कहते हैं, उसकी बहुत महिमा होती है, बहुत जय जयकार होती है। बाकी बिल्लियां भी उसकी बहुत जय जयकार करते हैं, और मुख्य योद्धा और वो योद्धा भी उसकी बहुत जय जयकार करते हैं। राजसी बिल्ली ने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया था। बहुत जय जयकार होने के बाद वो योद्धा पूछता है कि आखिर बताइए आपने ये किया कैसे, ये तो कोई साधारण चूहा नहीं था। तो वो बिल्ली कहती है, वो पूछता है राज क्या है। बिल्ली कहती है इसमें राज में क्या बात है, इसमें कोई राज नहीं है, राज इतना ही है कि वो चूहा है और मैं बिल्ली हूं, बस। अपने समान में स्थित है, यही राज है। और कोई राज नहीं है। हम कौन है, जैसे ही हम इसमें स्थित है तो माया क्या है फिर? बिल्ली, पेपर टाइगर या कोई डरावना प्राणी नहीं। यदि हम अपने समान में स्थित है तो संसार की कोई भी माया हमारे सामने आ नहीं सकती। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है ब्राह्मणों की अलौकिक लीलाएं। लीला शब्द बड़ा ऊंचा शब्द है, भक्ति का शब्द है। लीला अर्थात, लीला मतलब क्या? लीला मतलब कला, क्रियाकलाप, और भी कुछ। लीला अर्थात भगवान की लीला कही जाती है ना। भक्ति मार्ग में रामलीला, कृष्ण लीला, लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान लीलाएं करता है, दिखाया है रामायण में। बचपन में श्री राम जी वो पढ़ रहे वेद पुराण उपनिषद। तुलसीदास ने लिखा है, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, ते प्रभु पड़ी यह कौतुक भारी। जिसके सहज श्वास ही चार वेद है, श्रुति जिसके श्वास है, ते प्रभु पड़ी, वो भगवान पढ़ रहा है, यह कौतुक भारी। ये लीलाएं कर रहा है वो। लीला अर्थात खेल, लीला अर्थात निष्प्रयोजन खेल, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, खेल खेल है, खेल हो रहा है वो। क्रियाकलाप परंतु पर्पसलेस प्ले, डिवाइन प्ले, ऐसा दैवी खेल, उसे लीलाएं कहा गया है, लीला कहा गया है। सीता खो गई है, दिखाया है श्री राम ढूंढ रहे हैं सीता को। भक्त लिखते हैं वो तो भगवान है, वो क्या कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। उन्हें तो कोई दुख नहीं है, उन्हें कोई दर्द नहीं है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढ रहा है, पूछ रहा है वस्तुओं से, चीजों से, वनों से, वनस्पतियों से, तुम देखी सीता मृगनेनी लीलाए। भक्ति का शब्द है, तो भक्ति में भगवान लीला करते हैं ऐसा दिखाया है। जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। मैं जिस तरह जन्म लेता हूं और जिस तरह कर्म करता हूं वो साधारण नहीं है। जन्म कर्म च दिव्य च, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। ऐसे दिव्य कर्म जिसके है उसे लीला कहा गया है। तो भक्ति में लीलाएं भक्त नहीं करते हैं, भगवान करते हैं। और ज्ञान में कौन लीला करता है? भक्ति में भगवान लीला करते हैं, भगवान आते हैं और भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं भक्तों को रिझाने के लिए। निष्प्रयोजन, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाया है। सहज स्वतः स्फुरित खेल, यह संसार उसने किस लिए बनाया? कोई कारण नहीं है क्यों बनाया, खेल है, प्ले है। तो भक्ति में भगवान लीलाएं करते हैं और ज्ञान में, ज्ञान में कौन लीला करता है? क्या ज्ञान में भगवान लीलाएं करता है? करता है ना, भगवान भी तो करते हैं लीला। बाबा आते हैं, मुरली चलती है, वो सब क्या है? लीलाएं तो है, भगवान की दिव्य लीला है। टोली लेता है और देखा है ना बाबा को टोली फेंकते हुए, क्या है वो? भगवान लीलाएं करते हैं। तो जो भगवान करते हैं ज्ञान में वही हम भी करते हैं। और हमारी क्या है? दिव्य अलौकिक लीलाएं है, ऐसी लीलाएं है। भक्ति में ऐसी लीला भगवान करते हैं कि सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, वो लीला है उसकी। जो कुछ भी उसके कर्म दिखाए हैं वहां भक्ति में, वो सब दिव्य कर्म बताए हैं, सब कुछ लीलाए है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभ ही माथा। सुबह सुबह उठना सीखो उससे, कैसा वो रघुकुल रघुनाथ है, दिखाया है उसका चरित्र बहुत ऊंचा। लीलाए कर रहा है, लीलाए कर रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मणों की अलौकिक लीलाओं के ऊपर, ऐसी लीलाएं जिससे माया का नाश हो जाए। तो हम 21 प्रकार की लीलाओं की चर्चा करेंगे। 21 डिवाइन प्लेज ऑफ ब्रह्मिंस। सबसे पहली, यदि ये लीलाएं सभी ब्राह्मण करे तो माया खत्म हो जाएगी। यदि ये लीलाएं सभी ब्राह्मण हर दिन करे तो माया दम तोड़ देगी। पहली लीला अमृत वेले की लीला, पहली लीला अमृत वेले की लीला। एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। भगवान स्वयं आता है उस समय, और यदि हम सोए रहे, यदि हम उठे और साधारण हो अमृत वेला, यदि हम उठे परंतु नींद का असर हो, नींद का प्रभाव हो, आलस्य हो, अलबेलापन हो, व्यर्थ हो, निगेटिव हो, तो क्या कहेंगे? अमृत बांट रहा है भगवान उस समय। और यदि हम सोए हैं तो माया तो और शक्तिशाली होगी, और फिर हमको लगेगा ये चूहा जरूर कोई ईश्वरीय शक्ति वाला चूहा है, ये चूहा साधारण नहीं है। उस योद्धे की तरह हम भी बस वार चलाते रहेंगे और चूहा मरेगा नहीं। पिछले एक मास में जिसने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ खड़े करेंगे। ये इंद्र सभा है, ये इंद्र सभा है, इसके लिए झूट यहां चल ना सके, बहुत है परंतु फिर भी कम है। पिछले 15 दिन में जिसने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ खड़े करेंगे। 1 हफ्ते में जिसने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, आज जिसने अमृत वेला मिस करा वो हाथ खड़े करेंगे। आज जबकि पता था भट्टी में जाना है फिर भी मिस कर दिया, फिर भी सोए रहे, प्रातस क्या कहेंगे उसको, प्रातस स्मरा मृदि संस्फुरदात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम। तुरिया अवस्था की प्राप्तिया, 4th स्टेज जिसको कहा है शास्त्रों में, 4थी अवस्था चेतना की, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति 3 अवस्था है, और 4th जो अवस्था है सुषुप्ति तुरिया। सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम, सच्चा सुख वहां प्राप्त होता है। भव प्रातः काल का समय है, यदि हम उसमें सोए हैं तो दिन भर में शक्ति नहीं मिलेगी। जैसे किसी के घर में सुबह 4 से 5 बजे पानी आता है, बस दिन भर पानी नहीं आता। यदि गलती से एक दिन उस घर की गृहिणी सो गई तो सारे दिन भर उसे बकेट लेकर दूसरों से पानी मांगना पड़ेगा। इधर यदि सो गए तो सारे दिन भर बकेट लेकर सुख दो, शांति दो, आनंद दो, शक्ति दो, दूसरों से मांगना पड़ेगा। तुम राजा बनने वाले हो, भिखारी नहीं। स्वयं को शक्तियों से भर देना है सुबह सुबह। यदि ये अमृत वेले की लीला हम रोज करें और नियमित करें और शक्तिशाली रूप से करें और पूर्ण लगन से और एकाग्रता से करें, ऐसी करें कि जिसमें आंखों में मन में नींद का असर ना हो, जरा भी आलस्य नहीं, अलबेलापन नहीं, तो ही हम माया को हरा सकते हैं। तो पहली लीला है अमृत वेले की लीला। तो आज से इस भट्टी से ये बात को पक्का करना है कि कल से अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। उसके लिए बहुत सारी तैयारी उसके पहले दिन ही करनी होती है। रात में सोने की विधि क्या है उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहली विधि है, पहली लीला है अमृत वेला। दूसरी लीला है मुरली की लीला, परंतु मुरली सुनना और सुनाना ये हम नहीं कह रहे हैं। एक है मुरली सुनाना, एक है मुरली सुनना, इसको हम लीला नहीं कह रहे हैं। मुरली मंथन की लीला, मुरली चिंतन की लीला, आए सेंटर में मुरली सुनी और गए, बाबा ने कहा यह है पुरानी चाल। ये क्या है? पुरानी चाल। 10 साल से आ रहे, लिख रहे और जा रहे, वही के वही है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ इससे नहीं बढ़ेगा, मुरली का चिंतन करना पड़ेगा। कई लोगों को आदत होती है मुरली हुई पूरी निकले बाहर कि संसार की बातों का चिंतन करना चालू करते हैं। मुरली से पहले और मुरली के बाद ये दोनों समय चिंतन का समय है। जो सुना जो पढ़ा उसके ऊपर गहराई से सोचना, एकांत में जाना, मौन में जाना और चिंतन करना। जैसे आज की मुरली में सुबह का वरदान परिवर्तन की शक्ति, 3 प्रकार का परिवर्तन बाबा ने कहा है। सबसे पहला जो सुबह आज अमृत वेले में भी योग के बाद की क्लास में बताया था, पहला परिवर्तन स्वरूप का, दूसरा स्वभाव का, तीसरा संकल्प का। अगर ऐसा वरदान हम सुनते हैं तो मन में प्रश्न आना चाहिए, स्वरूप का परिवर्तन कैसे करें, स्वभाव का परिवर्तन कैसे करें, संकल्प का परिवर्तन कैसे करें, मन में प्रश्न आने चाहिए। बाबा ने आज ये क्यों कहा कि गरीब मुझे बहुत प्रिय है, क्या ऐसा है गरीबों में, क्यों वो गरीब निवाज है। जो लिख सकते हैं वो लिखे कम से कम 25 पॉइंट्स कि बाबा गरीब निवास क्यों है। जब ये ऐसा लिखेंगे उसे कहा है चिंतन, खाली नोट डायरी में नोट करके रखा है कि बाबा गरीब निवास है, बाप आए हैं गरीबों के लिए, बाप कहते हैं मुझे अरब खरब नहीं चाहिए, क्या करेंगे। ये मुरली के महावाक्य है सुबह के, वो लिख तो लिया परंतु वो डायरी में है, बुद्धि में कुछ नहीं है। बुद्धि में चिंतन चाहिए, बुद्धि में मनन चाहिए, बुद्धि में अध्ययन चाहिए। जब तक पॉइंट्स को वहां से निकालते नहीं बाहर और उस पर गहराई से एनालिसिस, विश्लेषण, डीप थिंकिंग, जर्निंग नहीं होता, पुरानी चाल करते रहो, लिखते रहो पॉइंट्स और डायरिया भरती रहेगी बस। क्यों कहा ऐसा, किस लिए कहा, किसको कहा, ये प्रश्न मन में आने चाहिए। साकार महावाक्य बाबा के जो बाएं उगाड़ती नहीं है वो कौन है, बीमार। जो गाय उगाड़ती नहीं है वो है बीमार। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं गोरा बीमार है। लिखने से केवल कुछ नहीं होगा मुरली, चिंतन करना है, चिंतन को लिखना है, रोज एक टॉपिक पर लिखना है। बाबा गरीब निवास है क्यों, लिखो पॉइंट्स। मुरली में महावाक्य है ज्ञान का सिमरन करो क्यों, लिखो पॉइंट्स। ये धन अविनाशी धन है क्यों, लिखना चालू। एकांत में चले जाना है निसर्ग के सानिध्य में, लॉन्ग वॉक, और सोचना है। मुरली सुनी, यहां से उठने के तुरंत बाद याद करना चालू करो क्या क्या सुना, वरदान क्या था, स्लोगन था क्या था, महावाक्य क्या थे, प्रश्न क्या थे, उत्तर क्या है। सोचते मनन करते घर पहुंचना, नाश्ता करना, सब कुछ चिंतन करते करते मन में। ऐसा नहीं यहां पर ज्ञान स्नान और यहां से निकले और सीधा बाहर भ्रष्टाचार का स्नान, अज्ञान का स्नान, राजनीति का स्नान। ज्ञान मान सरोवर आज सुबह की मुरली, ये क्या है, ज्ञान मान सरोवर। यहां पर तुम आते हो परी बनने के लिए, परी बन गए और निकलने के बाद वापस मनुष्य। पिबत राम रस, कबीर कहते हैं कि मैं राम रस को पी रहा हूं। मुरली सुनने की भी वस्तु नहीं है, मुरली क्या करने की वस्तु है, पीने की वस्तु है। पियेंगे रोज मुरली को साधारण नहीं समझना, परमात्मा महावाक्य है। भागवत में गोपिया श्री कृष्ण को कहती है तव कथामृतम, हे कृष्ण तेरी जो कथा है, तेरी जो वाणी है अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हमारा जीवन जल रहा है विकारों में। कवि भरिडितम, तेरी कहानी कवियों ने जिसका गायन किया है। कलमश अपहम, जीवन में कलंक लगे हैं, कलमश है, उन कलमशों को धोने वाली तेरी कथा है, तेरी वाणी है। कथामृतम तप्त जीवनम कविपीड़ितम काम शापहम श्रवण मंगलम। केवल श्रवण करने से ही मंगल होता है। बोरिदा जना, ऐसी उसकी वाणी है। तीसरी लीला भोजन की लीला। चौका शब्द है हिंदी में, चौका अर्थात रसोई। चार चीजें होनी चाहिए उसमें। पहला, भोजन किस पैसों से आ रहा है, कहीं वो पैसा किसी को शोषण करके तो नहीं प्राप्त हो रहा है, दो नंबर का तो नहीं है, झूठ की कमाई तो नहीं है, छल कपट से तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसे पैसे से भोजन आ रहा है तो वो ब्रह्म भोजन नहीं है। पहला पैसा। दूसरा, भोजन राजसिक है, तामसिक है कि सात्विक है, क्या है? अति उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है तो वो राजसिक में आता है। जिसमें उत्तेजना उत्पन्न हो, शरीर शांत न हो, वासनाएं प्रवृत्त हो, उसमें बहुत कुछ डाला हुआ है दुनिया भर का, वो योगी का भोजन नहीं। तीसरा, भोजन के दोष, भोजन में कंकड़ पत्थर बासी, वो तीसरा चौका में या तीसरी पॉइंट। और चौथा, भोजन जो बना रहा है, किस मनस्थिति में भोजन बनाया जा रहा है, ये चार पॉइंट्स है। और जो भोजन खा रहा है, अब उनके लिए किस भाव से वो खा रहा है, क्या भोग लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। कौन कौन माता है जो रोज 24 घंटे में एक बार भोग लगाती है, हाथ खड़ा करो। लगभग सभी। और बाकी माताएं भगवान को अपना बेटा बनाया है कि नहीं, तो उसको खिलाना नहीं है कि भूखा ही रख देते हो उसको? भाइयों में से कौन कौन भोग लगाता है? बहुत सारे हैं। जो कुमार या भाई अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो हाथ खड़ा करो। कुछ है जो भाई भी भोग नहीं लगाते, उनको भी भोग लगाना है, अर्पण करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति। हे अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से पत्र पुष्प और फल मुझे अर्पण करता है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। पत्र पुष्प फल कुछ भी, भगवान उसको नहीं देखता वो क्या है, भगवान इसको देखता है कि भावना क्या है। शिव बाबा अभोक्ता है, वो थोड़ी तुम्हारा भोजन खाएगा। भाव क्या है? अर्पण मयता, भोजन उसकी याद में, भोजन उसको अर्पण करके, भोजन एक धन्यवाद के भाव से। जो क्रोध में भोजन करता है, प्रसन्न चित्त नहीं है, उस भोजन को मांसाहार ही समझना। नॉनवेज फूड। अगला, अगली लीला ट्रैफिक कंट्रोल की लीला। फिक्स टाइम है कुछ कुछ दिनचर्या में, बाबा ने दे रखे हैं, कम से कम थोड़ी देर मन की जो ट्रैफिक है उसको रोकना है। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च किया और पाया कि जितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, 50% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कारण है ट्रैफिक। बाहर की ट्रैफिक नहीं, अंदर की ट्रैफिक। बाहर की नहीं, अंदर की। विचारों की ट्रैफिक, वो कारण है ट्रैफिक एक्सीडेंट का, वो कारण है रोड रेज। झगड़ा करते हैं ना रास्ते पर, क्रोध उसका, तो बीच बीच में अपने मन की ट्रैफिक को रोकना है, अशरीरी हो जाना, एकदम सब तरफ से डिस्कनेक्ट करके ऊपर टच करके आना। अगर कुछ भी नहीं होता है तो कम से कम उस समय मुरली की पॉइंट्स तो याद कर सकते हैं, वो 3 मिनट। इसकी और आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, कर्म योग, कर्म करते समय बाप की याद की लीला। ऐसे नहीं कि 9 बजे तक बाप की याद है, 9 बजे जैसे ही कर्म क्षेत्र पर गए भूल गए, और सीधा जब ऑफिस पूरा हुआ, काम पूरा हुआ 6 बजे 7 बजे, उसके बाद में याद आया कि बाबा है, और फिर वापस बाबा को याद, सुबह याद शाम को याद, दिन में जीरो, जीरो ना हो जाए सारे दिन भर। ज्योति जगती रहे, जगदीश भाई कहते थे ये जो लव है, ये जो ज्योति है, एकदम बुझ ना जाए दिन भर में, थोड़ी 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 रहे, ताकि फिर शाम को और बढ़ा सके। तो कर्म करते समय याद, कर्म करते समय बीच बीच में डिटैच हो जाना और उसको याद करना, या फिर श्रेष्ठ कर्म, बाबा ने कहा है, 5 परिभाषा दी है श्रेष्ठ कर्म की। श्रेष्ठ कर्म किसे कहेंगे? सबसे पहला श्रेष्ठ कर्म वो है जो आत्माभिमानी स्थिति में हो किया गया। हर कर्म जो आत्माभिमानी स्थिति में किया जाता है श्रेष्ठ है। दूसरा, जो बाप की याद में किया जाता है वो श्रेष्ठ है। तीसरा, जो श्रीमत प्रमाण किया जाता है वो कर्म श्रेष्ठ है। चौथा, जो नित्य भाव से किया जाता है, आज बाबा ने वरदान दिया है निर्मल और निर्माण, जो निमित्त भाव से किया जाता है वो श्रेष्ठ है। और पांचवा, निस्वार्थ। ये 5 चीजें चाहिए श्रेष्ठ कर्म के लिए। तो सारे दिन भर जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें आत्माभिमानी कितने हैं? आज बाबा ने कहा है सुबह की मुरली में, नोट करो हम बाप की याद में कितना थे। अलौकिक सगाई, कर्मयोग की लीला। अगली, नौवां, शाम। कितने लोग हैं जो रेगुलर शाम का योग करते हैं? कम है। जितना शक्तिशाली योग सुबह हो वैसा ही शक्तिशाली शाम को होना चाहिए। अगर उस समय यदि हम ऑफिस में है, ट्रैवल में है, ट्रेन में है, सेवा में है, फिर भी मन से योगयुक्त हो जाना है, एटलीस्ट 7 से 7:30 तक। यदि हम बिजी है, ट्रैफिक में है, बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय भी एकदम से योगयुक्त हो जाना है। और यदि कोई काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, फिर तो बैठकर होना चाहिए वो योग। अगली लीला, ज्ञान चर्चा की लीला। रात को सोने से पहले हमें ज्ञान की चर्चा करनी है। उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप के लिए 2 लोग की आवश्यकता है। आपस में मिलके बैठना है और फिर डिस्कस करना है बाबा ने आज क्या क्या कहा। क्योंकि जब तक ज्ञान की चर्चा नहीं होगी तब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। एक किताब है वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, उसमें बाबा ने, उस किताब में ब्राह्मणों के 10 कर्तव्य लिखे हैं। 10वां कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना, ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ड्यूटी। क्या हम ज्ञान की चर्चा करते हैं? कितने हैं जो रोज ज्ञान की चर्चा करते हैं? डिस्कस करनी चाहिए रोज सुबह जो मुरली चली, क्या कहा, क्यों कहा, क्या इसका अर्थ है, कैसे इसको प्रैक्टिकल में लाए, डिस्कस आपस में, प्रश्न पूछना आपस में, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं इसे इंग्लिश में, यह होना चाहिए। अगर कुमार है तो अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाए जो रात को 9:30 से 10 बजे तक या 9 से 9:30 बजे तक बैठे और ज्ञान की लेन देन करे। सेंटर पर भी, जो सेंटर पर रहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो घर पर रहते हैं वो घर पर करे, पर करना है। तो ज्ञान चर्चा की लीला। नेक्स्ट चार्ट की लीला, चार्ट या डायरी। तो रोज क्या करना है, चार्ट लिखना। अगर लिखना पसंद नहीं है तो कम से कम बाबा को सुनाएं। थक गए और आकर सीधा सो गए, 95 की मुरली, ये श्रीमत नहीं है। बाबा से बात करो, बाबा को पोता मेल दो, फिर ही जाकर सोना। तो लिखना, अगर चार्ट लिखना पसंद नहीं है तो कम से कम डायरी लिखना। डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत है, जिसमें हम अपनी सारी दिनचर्या लिखे, सुबह ये किया, फिर 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 ये किया। संसार में बहुत सारी महान आत्माएं हैं जिनको डायरी लिखने की आदत थी, उसमें वो साथ साथ अपनी चेकिंग भी करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, फाउंडर फादर ऑफ अमेरिका, रोज डायरी लिखते थे, रोज एक लिस्ट बनाई थी दिव्य गुणों की उन्होंने, उस समय 18वीं शताब्दी में। धार्मिक व्यक्ति नहीं थे पर डायरी जरूर लिखते थे चेकिंग के लिए, आज ये किया, आज वो किया, आज मेरे से ये गलती हुई, आज मैंने उसको ऐसा कह दिया परंतु मुझे नहीं कहना चाहिए था। और फिर संडे को अपनी डायरी खोलो तो अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। डायरी में रोज इसने मुझे ये कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, आंसू भी आ गए। चार दिन के बाद वही चीज पढ़ोगे तो लगेगा, अरे ये कोई रोने की बात थी क्या, इतनी छोटी सी बात और मुझे इतना हर्ट हो गया, ये तो कितनी छोटी सी बात थी। खाली जब होती है तो बड़ी लगती है, चार दिन के बाद वही बात देखो तो छोटी सी हो जाती है। इसलिए डायरी लिखना। नींद, रात को सोने की विधि की लीला, कैसे हम सो रहे हैं। अव्यक्त मुरली का कम से कम एक दो महावाक्य पढ़ के सोना है। पूरी मुरली नहीं कह रहे हम, बहुत बड़ी है, थोड़ा सा स्पार्क की छोटी छोटी किताबें हैं, एक तो ये, थोड़ा सा बैठकर दृष्टि लेते लेते सोना। जहां हम सोते हैं उस खटिया को भी सकाश, ताकि कोई विकारी स्वप्न भी ना आए। हम हमेशा कहते हैं कि जैसे ये हमारा बेड है, सात अंगरक्षक को तैनात कर दो, सात समान, जैसे हमारा यहां सिर है, यहां एक समान, खटिया के दो तरफ एक समान, दो इधर समान और दो बीच में, ऐसे सात समान, वो बहुत शक्तिशाली समान होने चाहिए। ये समान जैसे अंगरक्षक के रूप में हमारी खटिया के पास खड़े हैं, तो कोई भी विकारी स्वप्न नहीं आ सकता। जैसे कि एक संघ एक समान, मैं अनासक्त आत्मा हूं, एकदम संसार से अलग कर देने वाला संकल्प है ये। मैं अनासक्त, किसी से कोई लेना देना नहीं, सबसे डिटैच। दूसरा, मैं संपूर्ण साक्षी आत्मा हूं, इस संपूर्ण संसार के खेल को साक्षी होकर देखने वाला। मैं लगाव मुक्त आत्मा हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं, मैं सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा हूं, मैं आत्मा इस देह से मर चुकी हूं, मैं आत्मा ड्राइवर इस गाड़ी को गैरेज में लगाकर जा रही हूं अपने घर परमधाम। ये देह मेरा है ही नहीं, देह को नीचे छोड़ दिया और मैं आत्मा गई ऊपर। यह समान, ऐसे खुदे समान बनाने हैं, सात सात समान को खटिया के बेड के सब तरफ तैनात कर देना, तो कोई विकारी स्वप्न स्वप्न दोष कुछ भी नहीं होगा। कितने हुए, सात, नौ, अगला दसवां, स्वनायन की लीला। ये नौ थे दिनचर्या के, दिनचर्या की नौ बातें। अब आगे वाले हैं समान की लीला। रोज की मुरली से एक समान उठाना है, नया हो वो, वही रटा रटाया नहीं, कुछ तो नया या कुछ तैयार करने हैं जो मुरलियों में आते हैं, और उनका बार बार अभ्यास। वो बिल्ली से पूछते, तुमने ये कैसा किया, उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो चूहा है, मैं बिल्ली हूं, बस इतना काफी है। वो मेरे से शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वैसे ही मैं आत्मा कौन हूं, यह स्वमान। तो स्वमान की लीला। अगला, अलौकिक ड्रिल की लीला। हमने एक बात बताई थी ट्रैफिक कंट्रोल, यहां बता रहे अलौकिक ड्रिल। बाबा ने अलग 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 ड्रिल्स दी है, वो केवल ट्रैफिक कंट्रोल के समय नहीं, अलग अलग समय कर सकते हैं वो सारी ड्रिल्स। कभी पांच स्वरूपों का अभ्यास, कभी मैं आत्मा यहां हूं और आका किरणें फैल रही है, कभी मैं बाबा के पास गया, कभी वो नीचे आ गया, उससे संबंध जोड़ देना। अभी अभी एक क्लास कराई थी तो उसमें हम लोगों ने 108 बाबा से संबंध निकाले थे, जिसको हम कल लेंगे यहां पर और जिसका अभ्यास भी करेंगे, बाबा से 108 संबंधों की अनुभूति। वैसे तो मुख्य आठ है, आठ में से मुख्य तीन है, तीन में से मुख्य एक ही है, बाप, बाप टीचर सदगुरु, तीन, बाकी फिर आठ सबको पता है। वैसे हमने उसका विस्तार करके 108 निकाले थे ताकि कुछ वैरायटी हो, ताकि कुछ नवीनता हो, रमणीकता हो, नहीं तो वही पिछले संडे की मुरली में भी था ना, मैं बाप वो बच्चा, मैं वो बाप मैं बच्चा, बस वही पुरानी बातें, वही पुरानी चीजें, तो उदास हो जाते हो पुराना सुन सुनकर। लास्ट संडे की मुरली, अलौकिक ड्रिल की लीला। नेक्स्ट, सकाश की लीला। सकाश देने की लीला करनी है। एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा रात में जब सोते हो और आंख खुलती है क्या करो, सकाश दे दो और फिर सो जाओ। रात में अचानक आंख अगर खुल जाती है तो क्या कर दो, थोड़ी सी इधर उधर सकाश दे दो, बाजू वाले को भी दे दो ताकि वो भी उठ जाए अमृत वेला और फिर सो जाओ। आत्माओं को सकाश देना है। नेक्स्ट, इस पे हम और चर्चा करेंगे आगे। सहयोग की लीला, आपस में सहयोग। नेक्स्ट, संस्कार मिलन की लीला, आपस में संस्कार मिलन हो, ऐसा ना कि टकराव होते रहे। लास्ट संडे की मुरली, माला के जो दाने हैं समीप हो, भले संस्कार वैरायटी हो परंतु दाने समीप हो। नेक्स्ट, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की लीला। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की लीला। बहुत सारा विस्तार नहीं करना, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तुरंत फुल स्टॉप लगाते आना चाहिए, यह लीला। इसकी भी हम थोड़ी चर्चा और करेंगे। नेक्स्ट, साक्षी भाव की लीला। 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करनी है। कौन कौन सी? 24 घंटे में एक बार, और मुख्य रूप से शाम को, और वो भी योग करने से पहले। शाम को बाबा के कमरे में जब बैठते हैं तो ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करो। कौन कौन सी है बताओ, 20 पॉइंट बताओ, चालू करो, हम गिनते हैं बस। ड्रामा कल्याणकारी है, ये सबसे पहले पता है ब्राह्मणों को। ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है। पर हमारे साथ जब कुछ होता है तो ड्रामा थोड़ा सा कम कल्याणकारी है, कभी कभी कल्याणकारी है, और कभी कभी तो अकल्याणकारी भी है। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याण के पर्दे, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छुपा हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा के पास, निर्वर भाई साहब कहते हैं ना, बाबा के पास ऐसे 10-15 ड्रामा आ गए, डायरेक्टर है ना प्ले का, तो बाबा ने इस ड्रामा को चुना क्योंकि सबसे अच्छा ये है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया, तो ड्रामा एक्यूरेट है। अगला, ड्रामा अनादि है। अगला, बोलते जाओ फास्ट। ड्रामा में नहीं, क्या होकर देखना नहीं, ड्रामा क्या है वो बताना है। ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा अनादि है, ड्रामा कल्याणकारी है, और ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, बहु रिपीट होता है 5000 साल में, और ड्रामा शिक्षा नहीं, वो अलग पॉइंट है, ड्रामा कैसा है वो बताना है, ड्रामा वाह वाह है, नेक्स्ट। अरे रूटीन जो बाबा हमेशा पॉइंट बोलते हैं वो बोलिए, ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती है, ड्रामा फिक्स्ड है, इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, एक्यूरेट है, इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, हाँ निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, सारे झगड़े समाप्त, इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, और ड्रामा कैसा है, हो गया ड्रामा को बाबा भी बदली नहीं, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, और ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए, बाप को ड्रामा का हर एक्टर पसंद है, ड्रामा को बाप को ड्रामा का हर सीन पसंद है, तब को ड्रामा के हर एक्टर की हर एक्शन पसंद है, तो तुम्हें भी ड्रामा पसंद होना चाहिए, और बोलते जाओ, ड्रामा विविधता पूर्ण है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा सत्य है, इस ड्रामा में असत्य नहीं हो सकता है, जो हो रहा है वही सत्य है, इसमें कहीं अन्याय नहीं है, हमें लग रहा है ये अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इनके सबके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ जानबूझकर ऐसा करते हैं, और ड्रामा मां है, और जो मिल दिया था, पर ड्रामा क्या है, ड्रामा बिंदी है, ड्रामा को बिंदी लगाओ, ड्रामा बिंदी नहीं है, आप लगाओ बिंदी और ड्रामा ये भेद का ड्रामा है, ये 5000 साल का ड्रामा है, ये हूबहू रिपीट होता है, ये बोल दिया, अदली सदली बदली बदली नहीं होती होती, ड्रामा की टिक टिक चालू रहती है, ये ड्रामा हार और जीत का खेल है, ये सारी पॉइंट्स याद रखनी है, और एक लास्ट पॉइंट, इस ड्रामा में कुछ राज ही रहेंगे, यही इस ड्रामा की शोभा है, सारे राज नहीं खुलेंगे, इस ड्रामा के कुछ राज ही रहेंगे, और यही तो इस ड्रामा की शोभा है, ड्रामा बहुत सुंदर है, तो ड्रामा के पॉइंट्स याद करना, कहां थे हम, साक्षी भाव, अगली लीला हम थे फुल स्टॉप और साक्षी भाव, अगली लीला त्याग की लीला, तप की लीला और वैराग की लीला, ये तीनों चीजें चाहिए, त्याग तप और वैराग, तब माया दम तोड़ देगी, यदि हमारे जीवन, अभी भी त्याग पर साप्ताहिक कोर्स कराया बाबा ने, याद है ना, पूरे संडे, हर संडे में त्याग की मुरली चली, सुनी सबने, बताओ कौन कौन सी थी, त्यागी महातागी सर्वंश त्यागी, एक और क्या थी, पहली थी देहभान का त्याग, फिर था अधिकारी और दास आत्माओं के लक्षण, फिर था लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग, फिर था व्यर्थ का त्याग, फिर था त्यागी महातागी सर्वंश त्यागी, और एक 23 तारीख की मुरली थी, सर्वंश त्यागी आत्माओं की निशानियां, पढ़ी ना सबने कि खाली सुनी और लिखी है डायरी में, इधर लिखना है, किधर लिखेंगे, इधर, किससे लिखेंगे त्याग की लीला, तप की लीला, वैराग की लीला, कितने हुए, कितने 17, इधर 16 कैसे हो गए, फिर 17 हो गए ना, अगली लीला प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की लीला। हर दिन एक प्रतिज्ञा लेनी है। एक जो आदत है नहीं छूट रही है, चाहे वो इंटरनेट एडिक्शन है या न्यूज एडिक्शन है या मोबाइल एडिक्शन है या घूमना फिरना है, कोई तो एक आदत है, या व्यर्थ की बातें करना है, गॉसिप्स, झरमोई झगमोई, बैठकर किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी ननद ने क्या किया और किसकी सास और किसकी बहू और किसकी शादी में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, बैठकर उसका विस्तार से वर्णन करना, और खत्म होने के बाद अब कल मिलेंगे। बातें ऐसी पूरी नहीं होती है, एक वन सेशन नहीं, मल्टीपल सेशंस लगते हैं। प्रतिज्ञा करने की लीला। अगली लीला, सेवाओं की लीला। स्वयं को यज्ञ की सेवाओं में बिजी कर देना है तो माया दम तोड़ेगी, नहीं तो माया आती रहेगी। सूक्ष्म सेवा नहीं होती है तो स्थूल सेवा करो, सब्जी काटना, सेंटर की सेवा करना, हर प्रकार से उसमें अपने आप को झोंक दो। कम से कम विकर्म तो नहीं होंगे, पाप कर्म तो नहीं होंगे। सेवाएं करनी है और पुण्य सेवाओं की गंगा बह रही है संगम पर। सेवाओं की लीला। फिर है खुशी की लीला, सदा खुश रहने की लीला। पिछले सीजन की मुरली में बाबा ने एक शब्द प्रयोग किया था, खुशी के महल बन जाओ। क्या हो जाओ? खुशी के महल बन जाओ। कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो व्यक्ति है, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिससे मैं दुखी होता हूं? क्यों दुखी होता हूं? क्या कारण है मेरे दुख का? स्वयं सोचना है। फिर है दिव्य गुणों की लीला, स्वयं को दिव्य गुणों से सजाना है। सुबह हमने एक गुण देखा था, सहनशीलता का। याद करो अपने जीवन के उन प्रसंगों को, यहां जहां पर यदि हमने सहन कर दिया होता तो बात इतनी नहीं बड़ी होती। थोड़ा सा सहन करना था, नहीं किया था इतने इतना झगड़ा हो गया, संबंध बिगड़ गए। शायद यदि सहन किया होता तो कितना अच्छा होता। अगली लीला, कितने हो गए पूरे? हाँ, डन। हाँ तो बस अगली नहीं, तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। हमें ये सारी लीलाएं करनी है तो ये लीलाएं अलौकिक लीला है, दिव्य लीलाएं है। ये सारी लीलाएं हम करते रहेंगे तो माया समाप्त हो जाएगी। माया क्या? माया का एक बार बाबा ने कहा था हंसी में, जब पोप भारत में आए थे 60s में, तो बाबा से पूछा था सब लोगों ने, बाबा इसका क्या ये पोप ज्ञान में आएगा? तो बाबा ने कहा, तो ये पोप तो क्या, उसका बाप भी ज्ञान में आएगा। उसका बाप अर्थात जीसस क्राइस्ट, पोप का बाप तो वही है ना। तो बाबा ने कहा था उसका बाप भी ज्ञान में आएगा एक दिन। तो ऐसी अलौकिक लीला है। कितना टाइम हुआ है? 1 बज गया है। अभी हम एक शॉर्ट ड्रिल करेंगे और फिर इस क्लास को पूरा करेंगे। इसमें हमने एक बात कही थी, आपस में सहयोग, आपस में संस्कार, मिलन की रास। अभी हमें क्या करना है? डायरी सब नीचे रख दो, पेन बंद, किताब बंद, हिसाब चुकतू। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ है, यह हमने आपसे कहा था। हमारे भी इस पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत सारे हिसाब किताब हमारे ब्राह्मणों के साथ भी है, बाहर की आत्माओं के साथ है, बहुत सारे हिसाब है, हमें पता नहीं है। और शायद बहुत सारी आत्माओं की बद्दुआएं हमारे साथ चल रही है, इसके लिए सब कुछ करने के बाद में भी तीव्र नहीं हो पा रहा पुरुषार्थ। शायद किसी को हमने दुख दिया है, शायद किसी को हमने सताया है, शायद किसी को अपशब्द बोले हैं, शायद किसी का जीना मुश्किल कर दिया था, शायद किसी के विरुद्ध षड्यंत्र किए, शायद किसी पर व्यंग बाण छोड़े, कटु वचन बोले, दुर्भाव रखा। ऐसी सभी आत्माओं को हम इमर्ज करेंगे जिनको जिनको हमने क्या किया, दुख दिया, बहुत सताया, शारीरिक पीड़ा दी, शायद किसी जन्म में हमारी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी सभी आत्माओं को आंखों के सामने इमर्ज करेंगे और क्या करेंगे, उनसे क्या करेंगे, उनसे क्षमा मांगनी है। जब तक उनकी दुआएं हमें नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी तरफ बहुत सारी आत्माएं इस जीवन में भी है जिन्होंने हमें बहुत सताया है, कटु वचन बोले, अपमानित किया, दोषारोपण किया, झूठे इल्जाम लगाए, असहयोग दिया, निंदा की, सामने हमारी स्तुति की और बाहर जाकर हमारे विरोध में लोगों को भड़काया। ऐसी सभी आत्माओं को इमर्ज करना है और क्या करेंगे, उनको क्या कर देंगे, बेशर्त क्षमा, अनकंडीशनल पार्डन। क्यों कर देंगे माफ, क्यों माफ करना है हमें आत्माओं को, क्योंकि क्योंकि क्या है पावरफुल आंसर बताओ, हमें माफ क्यों करना है दूसरों को, यह देवताओं का गुण है, क्योंकि क्योंकि यह भी देवता कुल की आत्मा है, हमें माफ क्यों करना है दूसरों को, खुद को माफ करने के लिए, हमें दूसरों को माफ क्यों करना है, और हम क्षमा का सागर है, हम दया का सागर है, हम कृपा का सागर है, हम कौन है, दया का सागर है। कोमलचित अतिदीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, वर्णन है जो रघुनाथ है भगवान जो है बिना कारण दया करने वाला है, ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ कंपैशन, अल रहमान अल रहीम। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सबने उसे दया का सागर बताया है और हम भी वही है, इसलिए माफ करना है। और क्यों माफ करना है, हम ज्ञान गंगा है तो माफ करना, और हम कल्याणकारी है, और हम पूर्वज है, सबसे अच्छा उत्तर है क्यों माफ करना है, यह सब हमारी वंशावली है, हम पूर्वज है, हम श्रेष्ठ है, हम महान है, और माफ क्यों करना है, हम इष्ट देव है इसलिए माफ करना है, राइट, और हम मास्टर रचयिता है, ये सब हमारी रचना है, हमारी वंशावली है, इसलिए माफ करना है, और पावरफुल बन जाएंगे। और कोई कमजोर कभी माफ कर सकता है क्या, माफ करने वाला कैसा होता है, शक्तिशाली होता है, और अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड ही क्षमा है। हमें माफ क्यों करना है, और एक लास्ट उत्तर बता दो फिर हम एक ड्रिल करेंगे। बाबा की बच्चे इसके लिए हमें शुभ भावनाएं रखने, और अव्यक्त महावाक्य, तुम्हें संसार की आत्माओं को माफ करना है क्योंकि यह बाप का आदेश है, क्योंकि यह बाप का आदेश है, बस देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी में नियम होता है हां ना कुछ पूछो नहीं, देर इज बट टू डू, करो और मरो, दैट्स इट, ऐसे स्ट्रिक्ट नियम होते हैं आर्मी में, पूछना नहीं होता है राइट टर्न अबाउट टर्न, क्यों कहा राइट टर्न, क्यों कहा अबाउट टर्न, ये कौन सी आर्मी है, रानी साल्वेशन आर्मी, सुप्रीम कमांडर बाप, आज एक अव्यक्तवाणी यहां से चालू होती है, सुप्रीम कमांडर बाप आज अपनी रूहानी साल्वेशन आर्मी को देख रहे हैं, सुप्रीम कमांडर बाप आज अपनी रूहानी साल्वेशन आर्मी में शक्ति भरने आए हैं। तो सभी तैयार, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, और ये दो अभ्यास करेंगे। लाल लाइट होगी, सॉफ्ट म्यूजिक। भ्रुकुटी तख्त पर बैठी, चेतना की वह तेजस्वी किरण मैं हूं। रहम के सागर बाप की संतान मैं, मास्टर रहम का सागर हूं। स्थूल देह को यहीं छोड़, अब मैं आत्मा चलती हूं ऊपर आकाश में। मैं फरिश्ता उड़ चला तत्वों से पार, पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन में, सम्मुख खड़े हैं अव्यक्त बाप दादा। बाबा की वह नूरानी दृष्टि, बाबा की वह वरदानी दृष्टि, बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम दया के सागर हो, जाओ विश्व का कल्याण करो। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को जिन्होंने मुझे दुख दिया, सताया, पीड़ा पहुंचाई, अपशब्द बोले, यंगबान छोड़े, कटु व्यवहार किया, असहयोग किया, निंदा की, ग्लानि की, बार बार अपमानित किया। इन सभी आत्माओं को मैं देख रही हूं और मुझे स्मरण हो रहा है मैं कौन हूं। इस सृष्टि की मैं पूर्वज आत्मा हूं, रहम के सागर की संतान, कृपा सिंधु हूं। आज मैं इन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूं, बेशर्त क्षमा। वास्तव में इन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरा ही हिसाब किताब था। इनको क्षमा कर कर मैं स्वयं को बंधन मुक्त अनुभव कर रही हूं। इन सब के प्रति अब मेरे मन में प्रेम भरा है। मैं आत्मा अब दूसरी ओर देख रही हूं। ये वो आत्माएं हैं जिनको मैंने बहुत सताया, दुख दिया, कटु शब्द बोले, कटु व्यवहार किया, असहयोग दिया। देख रहा हूं कितनी क्रोध में है ये आत्माएं। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर दो। और देखते ही देखते सबके चेहरे पर मुस्कान और खुशी आ गई। अनुभव कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। सब अपने दुआओं का हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं। आज कितने बड़े बोझ से मैं मुक्त हो गया। मैं फरिश्ता, निर्बोझ, निर्भार और डबल लाइट स्थिति में स्थित हूं। और अब धीरे धीरे वापस नीचे उतरता हूं और इस तन में प्रवेश करता हूं। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता। ओम शांति।
ओ मेरे बागवान।